This is an ABP Life podcast.
में हैदराबाद में एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ चार लोगों ने रेप किया था और फिर हत्या कर वहीं छोड़ दिया था। उस समय कई बड़े नामी ग्रामी लोगों ने ट्वीट भी किए, साइना नेहवाल से लेकर के अनुपम खेर ने और ऋषि कपूर तक ने हैदराबाद पुलिस की सराहना करते हुए कहा था कि वो उन्हें सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उसी समय उन चार लोगों का एनकाउंटर कर दिया था। हालांकि इस एनकाउंटर की तफ्तीश के लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई। क्यों? क्योंकि भारत में अदालत का कानून चलता है, पुलिस का नहीं। तो उसी पैनल की रिपोर्ट अब आ चुकी है और जांच कमेटी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई जांच कमीशन ने पुलिस की पूरी कहानी को मनगढ़ंत बताते हुए एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। इसके साथ ही जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एनकाउंटर में शामिल सभी 10 पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। कमीशन ने कहा है कि पुलिस कर्मियों ने जानबूझकर गोली चलाई थी। अब इन पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगा है, मगर आज भी कई लोग सबसे बेसिक सवाल में उलझकर रह जाते हैं। वो है कि एनकाउंटर होने पर जांच समिति आखिर क्यों बिठाई जाती है? क्या एनकाउंटर करना गलत है? अगर है तो क्यों है? और आखिर क्यों लोकतंत्र में एनकाउंटर पर खुश नहीं होना चाहिए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं फर्जी इनकाउंटरों की। पहले तो जान लेते हैं कि इनकाउंटर क्या होता है। भारत में इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी में शुरू हुआ, जब सेल्फ डिफेंस के नाम पर, आत्मरक्षा के नाम पर पुलिस और आर्मी मुजरिमों और आरोपियों को मारने लग गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उनका डेटा लोकसभा में कोट करके बताया था कि पिछले 5 वर्षों में देश में कुल 655 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। छत्तीसगढ़ में 191 मामले सामने आए हैं। ये भी समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में आए दिन पुलिस की माओवादियों के साथ मुठभेड़ होती रहती है। आगे डेटा में कहा गया है कि एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, जहां 117 एनकाउंटर दर्ज किए गए। फिर असम, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो अब हमें पता है कि एनकाउंटर क्या होता है और फिलहाल एनकाउंटर के आंकड़े क्या हैं। कुछ मशहूर एनकाउंटर जो हम सबको पता होंगे वो मैं आपको एक बार गिनाई देती हूँ। तो 2004 में इशरत जहां का एनकाउंटर, जहां कहा गया था कि उसने तब के गुजरात CM नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची है। फिर 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी का एनकाउंटर, वजह सोहराबुद्दीन शेख लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर, 2016 में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया इनके SIMI के 8 छात्र कथित तौर पर भोपाल जेल से भाग निकले थे, तो उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया। जी हाँ, 8 के 8 लोगों का एनकाउंटर हुआ। 2019 में तेलंगाना पुलिस एनकाउंटर और 2020 में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया विकास दुबे का एनकाउंटर। इन सभी एनकाउंटरों में एक चीज कॉमन है, मिलती जुलती है, वो है शक का होना। हर केस में कहीं ना कहीं विपक्ष ने सत्तारूढ़ सरकार पर इल्जाम लगाया था कि चीजें दबाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अगर जांच बैठी तो मुजरिम सच उगलेगा, और ताकि उसके लपेटे में बड़े नाम ना आ जाएं इसलिए पुलिस से कहकर फर्जी एनकाउंटर करा देते हैं। ABP न्यूज ने 2019 में कुछ लड़कियों से इसी सिलसिले में बात की थी जब हैदराबाद एनकाउंटर हुआ था। सुनिए वो क्या कहती हैं।
आज सुबह हैदराबाद रेप केस के आरोपियों के मारे जाने के बाद से ही देश भर से महिलाओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। तरह तरह की प्रतिक्रिया जो है महिलाएं दे रही हैं, और ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो संतुष्ट हैं इस चीज से। उन्हें खुशी है कि रेप के आरोपियों को मार दिया गया। दिल्ली में अभी लोग क्या सोचते हैं, क्या लड़कियां सोचती हैं, ये हम बात करेंगे लड़कियों से। हम आपको बता दें कि हमारे साथ ये जो लोग मौजूद हैं, जो लड़कियां हैं, महिलाएं, ये स्वाति मालीवाल के अनशन को समर्थन देने के लिए आई हैं, जो कि हैदराबाद रेप केस के बाद से ही अनशन पर बैठी थी। स्वाति, तो हम इन लोगों से सवाल पूछेंगे। आप यहाँ पे आई हैं अनशन के लिए और समर्थन देने के लिए स्वाति मालीवाल को, हैदराबाद रेप केस के बाद से जिस तरह से स्वाति बैठी जिन मांगों को लेकर के, तो अब उन आरोपियों को मार दिया गया है, तो इसको लेकर के आप कैसे सोचती, कैसा लगा आपको?
मैं बस इतना कहना चाहूंगी क्योंकि वो जेल से भागे या जो भी है वो भाग इसलिए उनका एनकाउंटर हुआ है, मगर हमारी मांगे जो सीपी मैम ने मांगे रखी हैं वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ कल्प्रिट्स को मारना सॉल्यूशन नहीं है। बात यह है कि जितनी भी निर्भया हैं, जितनी भी दामिनी केसेस हैं, उनका क्या सॉल्यूशन, उनका एक
जो पुलिस ने आज काम किया है और रेप के आरोपी भाग रहे थे, पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या लग रहा है आपको इस घटना के बारे में, आप कैसे सोच रही हैं?
मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जब देश में हो रही होती हैं और हम एक बड़े कानून की मांग करते हैं, कुछ नहीं दिखता है तो छोटी सी चीज भी हो जाती है तो वो हमें हमारे लिए बहुत हो जाती है। कुछ नहीं से बेहतर है कि एटलीस्ट कुछ हो रहा है, एटलीस्ट एनकाउंटर हुआ तो लोगों को मैसेज गया कि नहीं वो गलत है।
ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन कहती हैं कि हैदराबाद एनकाउंटर नॉट जस्ट बट प्लॉय टू शट डाउन डिमांड्स फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर वुमेन एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पुलिस, जुडिशरी एंड गवर्नमेंट्स। हैदराबाद एनकाउंटर के बाद जस्टिस मार्कंडे कार्जू ने भी ट्वीट किया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस A.N. मूला ने यहाँ तक कह दिया कि मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहूँगा कि पूरे देश में एक भी कानून विहीन समूह नहीं है जिसका क्राइम रिकॉर्ड भारतीय पुलिस बल के क्राइम रिकॉर्ड के आसपास भी आता हो। मगर जब एनकाउंटर पर इतना बवाल होता है तो एनकाउंटर आखिर होता क्यों है और कौन इसे वैधता प्रदान करता है? अब हम बात करने जा रहे हैं पूर्व जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे SBS त्यागी से, जो खुद सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। जानते हैं वो एनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सबसे पहली बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एनकाउंटरों पर ऐसे पैनल क्यों बैठते हैं?
ठीक है, एनकाउंटर पर तो ऐसे पैनल इसलिए बैठते हैं क्योंकि एक वक्त आया हमारी पुलिसिंग के दरमियान जहाँ की लोगों को लगा, सिविल राइट एक्टिविस्ट को लगा, कोर्ट्स को लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की जिसमें कहा जितने भी एनकाउंटर होंगे तमाम एनकाउंटर की रिपोर्ट भी जाएगी हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन को, एनकाउंटर की रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में भी, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने पर यह तय किया जाएगा एनकाउंटर ये जेन्युइन था या इसमें कहीं कोई कानून संगत बातें नहीं हुई।
क्यों बैठती है एनकाउंटर पर कमेटी?
देखिए, एनकाउंटर के लिए भी हमारे देश में कानून है, एनकाउंटर के लिए भी हमारे देश में तमाम न्यायिक व्यवस्था है। जो एनकाउंटर का मतलब होता है किसी का जान लेना, किसी की जान लेना, और जान लेने का मतलब होता है जो पुलिस को किसी का जान लेने का अधिकार किसी विशेष परिस्थिति में होता है। क्या वो विशेष परिस्थिति थी जिसमें उस आदमी की जान गई, चाहे कानून में वो आदमी बेशक पुलिस की नजरों में, किसी की नजरों में बहुत बड़ा शातिर क्रिमिनल भी हो, तो क्या पुलिस के पास ऐसी स्थिति थी जिसमें कि उसकी जान लेने के अलावा पुलिस को कोई और रास्ता नहीं था? अदरवाइज किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसका पूरा ट्रायल होगा, उसको पूरी अपना डिफेंस पेश करने का मौका दिया जाएगा और हमारा लीगल प्रोसेस का जो डिक्टम है, जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हमारे लीगल सिस्टम, जो हमारा कानून कहता है, वो आदमी तब तक निर्दोष है जब तक कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स उसको दोषी ना ठहराया जाए, और दोषी ठहराया जाने वाला ना तो पुलिस है ना ये समाज है, दोषी ठहराए जाने वाली व्यवस्था हमारे यहाँ कोर्ट है। गोली इतनी ही मात्रा में चलाया जाए, पुलिस फोर्स इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए जिससे कि वो शातिर क्रिमिनल, वो दोषी इमोबिलाइज हो जाए, फिर पुलिस उसको पकड़ ले, पुलिस पकड़ के उसको न्यायिक प्रक्रिया के हवाले करे।
जब हम इनकाउंटर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो जनता है, उन्होंने किस तरीके से तेलंगाना इनकाउंटर को सेलिब्रेट किया था 2019 में, अगर हमें याद होगा, उन्हें हार पहनाए गए थे, फूलों की बारिश ही हुई थी पुलिस वालों के ऊपर, कई मतलब बैडमिंटन चैंपियन से लेकर के साउथ इंडिया के कई बड़े कलाकारों ने, यहाँ तक कि ऋषि कपूर जैसे लोगों ने, बड़े लोगों ने, अनुपम खेर साहब ने भी ट्वीट किए थे कि मतलब बधाई हो तेलंगाना पुलिस, आपने इतना बड़ा काम किया, आपने इनकाउंटर किया। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पर जनता का भी एक तरीके से कहले हामी
है, रुक जाइए। अगर उन लोगों ने उस वक्त जो जिन लोगों का नाम लिया, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से विषय में कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिन लोगों ने उसकी तारीफ की, आज वो कमिटी ने कह दिया जो वहाँ का वो इनकाउंटर, जिस तेलंगाना की बात कर रहे हैं, जिस किसी इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, उसमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं है। क्या आज वो लोग पब्लिकली माफी मांगेंगे? मैं बहुत जवाबदेही के साथ कहना चाहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, उनको कहते दूसरे का घर जल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, इनसेंसिटिव है, कंपैशन नहीं है, उनके मन में करुणा नहीं है, उनके मन में दया भाव नहीं है। और दूसरी चीज, जब तक उनका घर नहीं जलता है तब तक तो कहावत है ना, मेरा क्या जाता है। अदरवाइज कोई भी एक जवाबदेह इंसान जिसको देश की कानून में भरोसा है, देश की संविधान भरोसा है, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। यहां तक कि देखिए, आपको ध्यान होगा जो कसाब जैसे आतंकवादी को भी, जिसने तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोगों को मारा, गोलियां चलाई, उसको भी पूरी उसका भी इनकाउंटर नहीं हुआ था, उसको भी पूरी कानूनी प्रक्रिया से ही उसको सजा मिली, उसको फांसी की सजा मिली, सारे ऑप्शंस उसको उपलब्ध थे।
सर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो साइकी है कि हमें जल्दी हमें इंसाफ चाहिए, उनको लगता है, लोगों को लगता है कि ये इंसाफ है और हमें बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि इंसाफ में देरी लगती है, क्योंकि भारत में इतने केसेस हैं, कम कोर्ट्स हैं, तो वो साइकी जो है वो कहाँ से आ रही है?
वो साइकी हमारे दोहरे चरित्र से आ रही है। क्यों नहीं हम लोग अपनी न्यायपालिका से, क्यों नहीं हम अपने विधायिका से, लेजिस्लेटिव जो हम लोग की असेंबली है, क्यों नहीं हमने अपने जो हमारे कानून बनाने वाले हैं कानून, उनसे हम लोग क्यों नहीं मांग कर सकते हैं जो इस न्यायिक प्रक्रिया में और सुधार कीजिए। हमारे पास तो तमाम बहुत ज्ञानी और विद्वान लोग हैं, हर स्तर पर लोग हैं। इसमें भी जो है वो कौन सा समूह है, 600 लोगों का कौन सा समूह होता है 130 करोड़ देश में? 600 लोग कैसे तय कर देंगे? जो फूलमाला बरसा कर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, 2 ट्वीट 10 आदमी ट्वीट कर देंगे बहुत अच्छा हुआ, तो क्या उसको आप मान लेंगे? चाहे वो जितने बड़े सेलिब्रिटी हो, अपने फील्ड में होंगे, लेकिन अगर आप किसी भी जस्ट प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में यकीन नहीं करते हैं, तो मैं आपकी बातों से बहुत ही पोलाइटली आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद हूसओवर सेज बहुत अच्छा हुआ है।
क्या बुराइयां होती हैं एक एक इनकाउंटर कर देने में, एक फेक इनकाउंटर कर देने में, तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए?
देखिए, जब तो नॉर्म बन गया तो फिर तो जो 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 सबसे अधिक ताकतवर होगा वो इनकाउंटर भी, वो आपको हमको किसी को गोली भी मार देगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। या जो आदमी जो जो कोई पुलिस अधिकारी जो जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हों, किसी स्तर के लोग हों, तो कानूनी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं का, जिसका मन जिसके ऊपर बस चलेगा वहाँ गोली चलवा देंगे, उसको ट्रक के नीचे को चलवा देंगे, उसको मरवा देंगे, कल को कौन इसका शिकार होगा? और आम आदमी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा।
जी सर, आप क्या आपको लगता है कि समाज एक तरीके से काफी डिसअपॉइंटेड है जिस तरीके से लॉ इन्फोर्स किया जा रहा है देश में, कि उनको लग रहा है कि ये जो भीड़ का एक जो न्याय है उस पे उनको ज्यादा भरोसा हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है?
उनको भरोसा नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, इसे हम लोग समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग व्यक्तिगत फायदे और नुकसान की बात सोचते हैं, चाहे वो हमारे साथी अधिकारी हों। हम लोग का बहुत ही मोरल वैल्यूज में बहुत ही गिरावट आई है, सब हर स्तर पर आई हुई है। तो इसलिए जो लोग इसको इसमें ताली बजाते हैं, मुझे बहुत संदेह है उनको किसी कानूनी प्रक्रिया का पता भी है, उनके किसी जीवन मूल्य का भी अंदाजा भी है, भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, ताली बजाओ जी, कोई बात नहीं है।
सर, एक फेक इनकाउंटर करने के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं?
बहुत लोगों को लगता है इंस्टेंट सेलिब्रेशन हो जाता है, इंस्टेंट हीरो हो जाते हैं, तो कोई आदमी मेहनत करके हीरो नहीं बनना चाहता ना, कोई हीरो बनने में तो उसको तपना पड़ता है, हीरो बने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, ये तो किसी की जान ले लो, किसी को कुछ कर दो, किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर, या खुद स्वांतः सुख है, हम इनकाउंटर कर लिया, इनकाउंटर करके हम हीरो बन गए, किसी की जान ले ली, कोर्ट भी बन गए, कचहरी भी बन गए। नहीं तो कोई भी आदमी जिसका विवेक होगा, जिसकी आत्मा होगी, जिसके मन में करुणा होगी, इस तरह की चीजों को सेलिब्रेट नहीं कर सकता है।
जी आजकल ये जो फिल्में आ रही हैं खास करके जिसमें हम जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं उनको बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अरे देखो ये रहे हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कई पुलिस पर भी कुछ फिल्में आ रही हैं जहाँ पे जो एक वायलेंस है एक तरीके का उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि समाज और इसका कुछ लेना देना है? क्या आपको लगता है कि लोगों पर इसका असर पड़ेगा?
वर्तमान समाज में जो हो रहा है, फिल्में जो दिखाते हैं उनका भी कहीं कुछ एक मोटिव होता है, उनका मोटिव होता है। देखिए, सच को सच की तरह दिखाना, सच के भी कई पहलू हो जाते हैं। सच को सच की तरह दिखाना, समाज में कोई वैल्यू प्रमोट करना, समाज में कोई कोई अच्छी चीज प्रमोट करना, उनका पर्पस है कि नहीं है मुझे नहीं पता। वो तो चाहते हैं जो ऐसी चीजें दिखाओ जिससे कि हमारा बॉक्स ऑफिसर को पैसा 200 करोड़ 400 करोड़ का हमारा हमारी फिल्म हिट हो जाए। क्या प्रमोट करना चाहिए? सोशल कॉज प्रमोट करना चाहते हैं या दे विश टू प्रमोट वायलेंस, दे विश टू प्रमोट टेकिंग लॉ इनटू योर हैंड्स? तो मेरे हिसाब से इसको ग्लोरीफाई करना बहुत मुनासिब नहीं होगा, बहुत बहुत ही समाज के हित में नहीं होगा।
थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड टॉकिंग टू अस। अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये थे त्यागी जी और उन्होंने हमारे सभी सवालों के मेरे हिसाब से जवाब दे दिए हैं कि एक लोकतंत्र में क्यों इनकाउंटर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्यों जरूरी है कानून को कानून का काम करने देना। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जनता इस बात से हताश है कि कानून सही से लागू नहीं किया जा रहा है या फिर इंसाफ की डगर बहुत लंबी है, बहुत समय लगता है भारत में अगर एक बार केस अदालत पहुंच गया। मगर इनकाउंटर की ये जो प्रथा है जिससे कोई बेगुनाह भी मारा जा सकता है या जिसमें असल मास्टरमाइंड का पता ही ना चल पाए, वो देर के इंसाफ से कितना बेहतर है ये हमें सोचने की जरूरत है। वी हैव टू प्रायोरिटाइज। बाहुबलियों के नाम पर खुश होना, फिल्मों में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना असल जिंदगी नहीं दर्शाता है और दर्शानी भी नहीं चाहिए। हम एक लोकतंत्र है जो लोगों के वोट से बनता है। यहाँ भीड़ चाल और जनता का नहीं बल्कि अदालत का कानून है और पुलिस का काम है लोगों को पकड़ना, उन्हें मारना नहीं। दोस्तों, स्पाइडरमैन फिल्म में कहा गया था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सरकार ने किसी संस्थान को अस्त्र शस्त्र दिए हैं जनता की रक्षा के लिए तो वो उसी के लिए इस्तेमाल हो ये भी जरूरी है। हम सब ने अलग अलग देशों में देख रखा है कि भीड़ तंत्र होना, ये भीड़ का कानून कितनी त्राही ला सकता है। बाकी आप समझदार हैं। फिलहाल आज FII में इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे अगले FII में ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहें एबीपी लाइव पॉडकास्ट के अलग अलग पॉडकास्ट और खास करके FII। मैं हूं साहिबा खान। पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित ने। नमस्कार।
फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं, क्रेडिबल न्यूज शेयर करो। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।